लगा कि वाह कि कुछ बड़ा हो गया है, उसे कुछ छोटा होना चाहिए। लेकिन इस ख्याल के साथ ही मुझे हंसी आ गई। साले चूतिया, नहीं तो जरा सी ठोड़ी में चोट लगी और मृत्यु का घोषणा पत्र और वसीयत नामा लिखने लगे, और वह भी झूठ, सरासर झूठ। मैंने करोट बदली, गोया करोट बदलने से विचार भी बदल जाएंगे और वह भारीपन जो मेरे शरीर और मन पर छाया हुआ है दूर हो जाएगा। पर मैं सारी चीजों को दूसरे ढंग से सोचने लगूंगा और सचमुच यही होने लगा। मेरे मन में ख्याल आया कि जब उठूंगा और सानू सामने आ पड़ेगा तो क्या कैसे क्या होगा। वह अपने नाइट गाउन में मुस्कुराता हुआ हाल में आएगा और माथे पर गिरे बालों को झटक कर ऊपर करते हुए बोलेगा, हाय बरखुरदार, यू ग्रेट सन ऑफ ग्रेट इंडियन सॉयल, रात कैसी नींद आई, कैसे क्या होगा। मैं ठोड़ी पर रुई चिपकाए लंगड़ाते हुए क्या जवाब दूंगा, और मुझे लगा कि मैं मुंह चुरा रहा हूँ और वह जबरदस्ती मेरे चेहरे को अपनी ओर करना चाह रहा है। मैं आंखें बंद रखना चाहता हूँ और वह उनमें झांकना चाहता है अपनी मूछों के नीचे मुस्कुराते हुए। जैसे जैसे उसके पतले ओठ फैलते गए, मुझे काले कोड़े की तरह तंती चली गई। कोड़ा पीछा कर रहा है और मैं भाग रहा हूँ, भागना चाह रहा हूँ, और पांव जहाँ के तहाँ है। मदद के लिए चिल्ला रहा हूँ लेकिन कंठ से आवाज नहीं फूटती है। रेखा पत्नी बड़े ठंडे स्वर में बोल रही है, मेरी छोटी बहन, यह आदमी मेरा पति, मेरे पांच बच्चों का बाप, जो घायल भेड़िए की तरह तुम्हारे डनलप के गद्दे पर बेतरतीब पसरा हुआ है, जिसे थोड़ी देर पहले तुमने काफी खरी खोटी सुनाई है, जिस पर किसी जमाने में तुम मरती थी। नहीं, मुझे कह लेने दो, मुझे सब मालूम है, और तुम बहुत कुछ कह चुकी हो, और जिस पर आज भी मरने वालों की कमी नहीं है, यह आदमी, मुझे अचरज है कि रात भर इस सारी रात अपमान सहता हुआ कैसे चुप रहा है। जिस आदमी ने सब कुछ बर्दाश्त किया है लेकिन अपमान नहीं, यह क्यों चुप रह गया, मुझे आश्चर्य है। आज तक किसी से नहीं कहा मैंने, लेकिन तुमसे कह रही हूँ। शादी के बाद जब मैं इसके घर गई तो पहली शाम मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहती हूँ कि पहली शाम इसने मुझसे 20 रुपए मांगे थे, 20 रुपए वह भी उधार, दोस्तों की जिद पर उन्हें सिनेमा दिखाने के लिए। मेरे मुंह से निकला, अगर इतने ही कंगाल थे तो मुझे क्यों लाए हो। हे बच्चों, तुम लोग बाहर जाओ, जाओ बेटा बाहर खेलो। हाँ, तो मुझे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन मुंह से निकल गया तो निकल गया। और इधर देखो, मेरे बाएं गाल पर आज भी एक उंगली का निशान है। और यह भी बताऊं कि जिसे सुहागरात कहते हैं, उसे मैंने ब्याह के 3 महीने बाद जाना, और तब से मैं बराबर देखती रही कि इसने कभी किसी का रोब नहीं सहा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, किसी की खुशामद नहीं की, किसी का ताना नहीं सहा, और आज वही आदमी यहाँ लाश की तरह पड़ा हुआ है। क्यों हुआ ऐसा। देखो दीदी, अब बस करो, सुनाने के लिए मैं भी बहुत कुछ सुना सकती हूँ, अब इससे अधिक क्या सुनाओगी तुम, तुम्हारे पास बचा ही क्या है सुनाने के लिए। मैं तो रेखा इसलिए कह रही हूँ कि रात भर रोती रही हूँ, सारी रात मेरी ये पलकें देखो, और रात ही क्यों, जब से आई हूँ तब से रोती रही हूँ। मैंने इस मर्द के साथ 16 साल गुजारे हैं, सारी जवानी गुजारी है इसके साथ मैंने, मैंने किसी नशे का असर नहीं देखा इस पर, चाहे शराब हो, चाहे गांजा, चाहे भांग, चाहे दौलत। हाँ, दौलत या धनी से धनी और दबंग से दबंग आदमी के साथ ऐसे पेश आता रहा है जैसे वह कौड़ी का 3 हो। मेरे कहने का अर्थ यह कतई मत लेना कि मैं इसके या अपने अपमान का बदला ले रहा हूँ, ना ऐसा मत सोचना। बदला मैं तुमसे क्या लूंगी, जिसे यही नहीं मालूम कि उसके बाप के गुजरे कई महीने हो गए और भाई घर पर है या जेल में। नहीं, पहले पूरी बात तो सुनो। मेरी मुश्किल यह है कि सिर्फ इसने खुद अपनी ठोड़ी क्यों फोड़ ली, जानबूझकर क्यों फोड़ी। क्या इसलिए कि यह सानू का कुछ नहीं कर सकता था, क्या इसलिए कि यह मेरा रिश्तेदार और तुम्हारा पति था, क्या इसलिए कि शुरू से ही तरह तरह की फरमाइशें करके यह मांग के वह मांग के दूसरों की देखा देखी अपने भीतर सपने जगा के औरों के आगे इसे नाचीज ठहरा के मैंने इसे कुंद बना दिया, क्या इसकी धार भोथर कर दी। वरना तुम ये इतने से बच्चे तक इसकी दाढ़ी पर फूल खिलाकर चले जाएं। और यह मेम साहब, फोन आया है साहब का, कोमल किचन या सानू के कमरे से चिल्लाया। सोना सिसक रही थी और उसकी आवाज मानस की चौपाइयों और सुबह की हवा और बेला की गंध के साथ हिलती डुलती रही। मुझे लगता रहा कि मैं जो क्षितिज के किनारे बड़ी देर से थके बादल के टुकड़े की तरह ठहरा हुआ था, अब आसमान में धीरे धीरे तैर चला हूँ। मेरी प्यारी पत्नी, मैं विश्वामित्र के समान छाती पर लहराती हुई सफेद दाढ़ी के साथ दोनों हाथ फैलाए जैसे उठ खड़ा हुआ। मांग ले, जो भी तुझे मांगना हो मांग ले। मैं यह सारी दुनिया फूलों की तरह देखो, यूं अंजुलियों में उठाकर फूलों की तरह तुम पर बरसा सकता हूँ। हाँ, फूलों की तरह यह सारी दुनिया, मगर एक काम करना, घर की गली के सामने उतरते समय यह न कहना कि बच्चों के लिए कहीं 1.5 किलो इमरती ले लो। फिर भी, हालांकि जेब खाली हो चुकी है, फिर भी पिए प्राणों की प्राण। मुझमें इतनी शक्ति है कि तुझे सीने से लगा लूं, बाहों में उठा लूं, उस हिस्से को चूम लूं जहां मेरी उंगली का दाग है। अरे साहब का फोन आया है, क्या मतलब? सानू कहीं बाहर गया है क्या? मैं मारे खुशी के उठकर बैठ गया। पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। यार अब यह मर्सिया पढ़ना बंद करो, तैयार हो जाओ जल्दी से फटाफट। अगर वह नहीं है तो अभी निकल चलते हैं। मैंने फर्श पर खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन जोड़ के दर्द ने रोक लिया। पत्नी ने मुझे देखा और देखती रही। वे इस तरह देखती रही जैसे अभी अभी ब्याही हुई गाय अपने बाछे को देखती है। इस तरह देखती रही जैसे हम 16 साल बाद मिले हों। मैं उनके आगे पहली बार शर्माया, और कुछ ऐसा शर्माया कि उठकर अपना मुंह उनके आंचल के अंदर कर लिया। वे चुपचाप मेरे बालों में उंगलियों से कंघी करती रही। भारत माता, मैं व्यंग से मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। आज्ञा दीजिए। उनकी ठोड़ी के नोक पर आंसुओं की बूंदें दोनों गालों से सरक कर जमा हो रही थी, और उनके टपकने की रफ्तार थोड़ी तेज हो गई थी। दर्द ज्यादा तो नहीं है? वे बिना सिर उठाए बोली। क्या कहा, ज्यादा है ही नहीं? वे चुप हो गई और कुछ देर तक सोचती रही। जाओ रिक्शा ले आओ, चल तो सकते हो ना? उनकी आवाज बेहद ठंडी और शांत थी। अरे जीजाजी, रेखा कमरे में घुसते ही चौंक गई। आप तो, अरे वाह, गाड़ी 12:30 बजे जाती है आपकी, तब तक आप चंगे हो जाएंगे। डार्लिंग आज 7 बजे ही जाएगी, तुम्हें मालूम नहीं? मैं उसे देखकर हंसा और सोना की ओर मुड़ा। ऐसा करो कि इनके सारे सामान निकाल कर अलग अलग रख दो, इनका कुछ नहीं ले जाना है, मैं रिक्शा लेकर आ रहा हूँ। नहीं, यह क्या कर रहे हैं आप लोग? 12 बजे खन्ना जी की जीप आएगी, और अभी सानू ने फोन पर किया था कि कमिश्नर साहब के यहाँ से हम सीधे 12 बजे स्टेशन पर मिलेंगे। अभी किसी ने मुंह हाथ नहीं धोया है, नाश्ता नहीं किया है। रेखा, पत्नी ने रेखा के हाथ पकड़ लिए। हम नाराज नहीं है मेरी छोटी बहन, हम बड़े खुश हैं। तुम लोगों की खातिरदारी से हम बड़े संतुष्ट और खुश हैं, लेकिन हम पर तरस खाओ, हमें जाने दो, ईश्वर के लिए प्लीज अब मत रोको। हम फिर आएंगे, कहोगी तो फिर आएंगे और बहुत दिन रहेंगे, लेकिन अब की जाने दो, मेरी बात मानो, हम सचमुच खुश हैं। दाहिनी टांग घसीटते हुए मैं दरवाजे के बाहर आया और बरामदे में खड़ा हो गया। आसमान साफ था, धरती सूखी थी और सामने से ठंडी हवा आ रही थी। मैदान का आधा हिस्सा छाया में था और आधा धूप में। मैदान के पार धूप वाले हिस्से में 2-3 रिक्शे खड़े थे, जिन तक आवाज पहुंच भी सकती थी या नहीं मुझे संदेह था। मैंने शहर के पूर्वी किनारे पर बादल के एक छोटे से टुकड़े के साथ जूझते सूरज को देखा। जैसे ही वह पल भर के लिए बादल से बाहर आया, मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, गुड मॉर्निंग सर। मेरी आवाज रिक्शे तक नहीं पहुंच सकती थी, मुझे लगा। मैं मुस्कुराया और मैदान के बीच से भटकते हुए चल पड़ा, सीना ताने और गर्दन उठाए, गोया इतने से मेरा भटकना छिप जाएगा।